पिछले बार जब आया था तो हम चैतन्य चंद्र जी आकर डिस्कशन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का समय था। तो आज मैं सोच रहा था कि हम एक दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे आचार्यों ने वैष्णव गीत लिखे हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ गीतों से कुछ अंश देखेंगे, इससे हम जो भावनाएं हैं उनको एक तरह समझ सकते हैं। तो जो भक्ति है उसकी समझ धीरे धीरे अलग अलग शास्त्रों में दी है। अगर हम भगवद्गीता में देखते हैं तो भगवद्गीता में कहीं नाचने गाने के बारे में उल्लेख नहीं आता है। तो भगवद्गीता प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक इमरजेंसी स्क्रिप्चर था, कि ये एक ऐसी आनी की परिस्थिति थी जो इस समय पे वो किताब लिखा गई है। तो भगवद्गीता का उद्देश्य यह है कि किस तरह से कि कौन सा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए, कि अर्जुन को कौन सा मार्ग अपना चाहिए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, तो वो मार्ग कैसे अपनाना है, उस मार्ग में क्या करना है, इसका वर्णन भगवद्गीता में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन इस संस्कृति में थे कि वहां पे भक्ति अगर करनी है तो कैसी करनी है ये पता है, योग अगर करना है तो योग कैसे करना है वो भी पता है, तो कैसे कोई मार्ग अपनाना है वो पता है। पर अर्जुन की समस्या क्या थी, कौन सा मार्ग अपनाना है। तो इसीलिए जो भक्ति की संकल्पना है भगवद्गीता में वो एक तरह से प्राथमिक है, मतलब भक्ति का उल्लेख है। स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भक्ति ही हमें करनी है, पर भक्ति कैसे करनी है इसके बारे में ज्यादा श्लोक नहीं है। नौवें अध्याय में 13-14 श्लोक है। 13 श्लोक जो है बताता है भक्त के अंतरंग लक्षण, 14 श्लोक जो है बाह्य लक्षण बताता है। महात्मा नस्तुमा पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वो अंतरंग रूप से पूरी तरह से भगवान पे एकाग्र है और अपना चित्त कहीं और नहीं जाने देता है, और फिर यह बाहर रूप से कैसे व्यक्त होता है वो अगले श्लोक में बताया गया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमश्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये हमेशा कीर्तन करता है और हमेशा दृढ़ संकल्प से सेवा करता है, नमन करता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 12वें अध्याय में भक्त के गुण बताए गए, पर वह भी गुण एक तरह से देखा जाए तो नकारात्मक रूप में बताए हैं। नकारात्मक रूप में बताया मतलब कैसे भक्त जो है भौतिक प्रभावों से परे रहता है। बोलता है कि यस्मा नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चया हर्षाम हर्ष भयो उद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिया। कि जो किसी से विचलित नहीं होता है, जिसके द्वारा कोई विचलित नहीं होता है, जो हर्षाम हर्ष भय इन सब परिस्थितियों में एक समान रहता है। तो वहां पर जो सब प्रधान रूप से बताया है वो बताया है किस तरह से भक्त एक चित्त रहता है हमेशा, वह विचलित नहीं होता है। और बाद में भी अंत में हम देखते हैं जो भगवद्गीता बोलते हैं सर्वधाम प्रतिमा एकम शरणम, जो उसके पहले आता है मन मना भव मद भक्तो, तो उसमें एक बाह्य एक वर्णन है कि आप मन में उसमें लगाओ, मेरा नमन करो, मेरी पूजा करो, पर विस्तारित वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक शास्त्र का एक पार्श्वभूमि होती है और उसके अनुसार वो शास्त्र का संदेश दिया जाता है। तो भगवद्गीता का संदेश जो है वह अभी अर्जुन भौतिक भावनाओं के कारण न केवल विचलित हो गया है पर वह एक तरह से उध्वस्त हो गया है, उध्वस्त होने के अभी तट पे ही आ गया है। तो इसलिए उस समय जब भौतिक भावनाएं बहुत व्यक्ति में आ गई है उस समय एकाएक आध्यात्मिक भावनाएं अनुभव नहीं की जा सकती। तो इसीलिए उस समय अर्जुन को बताया गया कि आप शांत हो जाओ, आप पहले भौतिक भावनाओं के परे हो जाओ और फिर उसके बाद में भक्ति की जो भावनाएं हैं उनका वर्णन खास करके पुराणों और इतिहासों में आता है। और पुराणों और इतिहासों में भी अगर हम देखते हैं तो अलग अलग पुराण इतिहास हैं। तो श्रीमद् भागवतम अगर हम तीन किताब देखेंगे पुराणों और इतिहासों में, एक है रामायण, अभी रामायण और श्रीमद् भागवतम इन दोनों में कई फर्क है। वास्तव में अगर रामलीला के लिए कोई भागवत के समान किताब है वह है आध्यात्म रामायण, आध्यात्म रामायण लगभग एक किस्म की किताब है जिसको चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य भागवत में भी उसका उल्लेख आता है, उसमें से लीलाओं का उल्लेख आता है। तो रामायण और भागवत में फर्क क्या है? कई फर्क है। सबसे पहला फर्क यह है कि संपूर्ण रामायण में स्पष्ट रूप से भगवान राम ये भगवान है इसका जोर से उल्लेख नहीं है। तो उसके और संकेत जरूर है पर उसका उल्लेख नहीं है, और स्पष्ट रूप से या जोर से उल्लेख नहीं है। इसका कारण क्या है? जो रामायण की शुरुआत है, जैसे मैं कल प्रवचन बता रहा था, भागवतम का सार क्या है समझना है तो उसके बीज क्या हमें लिखना चाहिए। तो रामायण के जो बीज है उसकी शुरुआत में आते हैं। उसकी शुरुआत में नारद मुनि को वाल्मीकि ऋषि सवाल पूछते हैं कि आदर्श व्यक्ति कौन है, और वह अनेक गुणों के, सद्गुणों के बारे में उल्लेख करते हैं। कहते हैं ये गुण दर्शाने वाला कोई व्यक्ति है क्या? और फिर हाँ, नारद मुनि कहते हैं जरूर ऐसा व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है वह प्रभु श्री रामचंद्र है। तो इसीलिए जो नारद मुनि ने विषय पे बताया है, जिस विषय के अनुसार वाल्मीकि ने ध्यान किया है, उसमें जोर क्या है कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र ये आदर्श मानव है। इसीलिए उसमें जोर नहीं दिया है रामायण में कि ये भगवान है, क्योंकि अगर वे भगवान है तो फिर वो तो हमारे आदर्श ही बन सकते, तो भगवान ही है। तो फिर जो रामायण का उद्देश्य है वह पूरा करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्यत्व के भगवत्व पे ज्यादा जोर नहीं दिया है। इसलिए अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में भी हम देखेंगे कि जो स्पष्ट रूप से भक्ति की भावनाएं हैं वो है, पर वो उतनी तीव्रता से नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जो है वह स्वयं भगवान के रूप में लीला स्वीकार, भगवान के रूप में लीला नहीं कर रहे, वह उस किताब में। तो इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि जो शबरी की लीला है वह वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वास्तव में शबरी का उल्लेख है, पर यह उल्लेख नहीं है कि शबरी ने आधे खाए हुए फल प्रभु श्री रामचंद्र को दिए थे। शबरी का उल्लेख है और शबरी ने फल भी दिए, ये भी उल्लेख है, पर वह आधे चखे हुए फल थे और वो दिए, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण का जो जोर है वह प्रभु श्री रामचंद्र को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाया है, तो वो भगवान है इस पे जोर नहीं है। इसके कारण क्या है कि वाल्मीकि ऋषि ये दिखाते नहीं है कैसे अगर एक आदर्श व्यक्ति है तो जो शबरी जो है उसको भी एक सुसंस्कृत स्त्री के रूप में दिखाया, और वह ऐसे भगवान की सेवा करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो वह एक भील स्त्री थी, आदिवासी स्त्री थी, उसके बारे में इतना स्पष्ट रूप से वर्णन जो है, उस पे जोर जो है वह बाकी प्रभु श्री रामचंद्र के शास्त्रों में आता है, के ग्रंथों में आता है। तो जो रामायण है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र अनेक चमत्कारिक कार्य करते हैं, और फिर उस उन कार्यों के कारण उनको सभी देव देवता भी गुणगान करते हैं, राक्षस जो है रावण जैसे बाकी तो राक्षस भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि ये भगवान हैं। और उसी रामायण में ऐसे वर्णन भी है कैसे देवी देवताओं ने याचना की थी कि यहाँ पे भगवान आए। तो ऐसे नहीं है कि वो भगवान नहीं है, इसका वर्णन नहीं है, पर जो भगवान और भक्त का संबंध है उसमें जो भक्तिमय भावनाएं हैं वो भक्तिमय भावनाओं पर जोर नहीं है। अभी जो दशरथ महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र का संबंध है तो उसमें जोर क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी का आदेश पालन करना चाहिए। सीता जो है वो कहती है कि मैं जरूर मेरे पति के साथ जाऊंगी। तो इसमें यह उल्लेख नहीं है कि ये भगवान है। तो उसमें कैसे है रामायण एक एक ओर से देखा जाए तो वो क्या शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, पर दूसरी ओर से देखा जाए वो कर्मकांड पे भी हमें धर्म सिखाता है, कैसे व्यक्ति को धर्मार्थ काम मोक्ष का साधना करनी चाहिए, ये धर्मनिष्ठ रहना चाहिए। तो कैसे दशरथ महाराज के प्रति राम धर्मनिष्ठ थे, उनके दशरथ रामचंद्र के प्रति का सीता धर्मनिष्ठ थी, कैसे भरत और लक्ष्मण का त्याग भाव था, ऐसे धार्मिक भाव था। तो इसमें जो है धर्म की सीख बहुत है और भक्ति की सीख भी है, पर वो भक्ति की सीख समझने के लिए हमें आचार्यों की दृष्टि से देखना चाहिए। जो बाद में महान राम भक्त आए हैं, उसके पहले भी राम भक्त थे रामायण के दर्शाने के पहले, पर राम भक्त की दृष्टि देखते हैं तो वही लीलाओं का विस्तारित वर्णन होता है, और उसमें हम देखते हैं कैसे प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति करी जाती है। तो रामायण में अभी बता रहा भागवत और रामायण में फर्क। दूसरा एक फर्क है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि प्रभु श्री रामचंद्र को लोग प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। जैसे भागवत में अनेक जगह पे प्रार्थनाएं आती है, वैसे स्पष्ट रूप से प्रार्थनाओं का अर्पण नहीं है, उनका गुणगान होता है। जैसे वो रावण का वध करते हैं, सब देवी देवता आते हैं और उनका गुणगान करते हैं, वो उनको वास्तव में गुणगान जब करते हैं तो वो गुणगान किस तरह से कर रहे हैं, वो कहे सारे देवी देवताओं को परेशान कर रहा था, उसको आपने मार डाला, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र एक मानव की लीला कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे नहीं कहते हैं कि वे आप विष्णु हो और आपने हमारा संरक्षण किया। वो कहते हैं कि आपने हम देवताओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, इसीलिए हम आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या आशीर्वाद दे? तो प्रभु वास्तव में तो उनको ही भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि उनको रावण के आतंक से मुक्त कर दिया है। पर क्योंकि वो देवता है, वो मानव है, यहाँ पे देवता है, तो इंद्र कहते हैं हम देवताओं का जो दर्शन है वह कभी निष्फल नहीं होता है, तो इसीलिए तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग लीजिए। और फिर तभी वो बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र क्या मांगते हैं कि ये सब वानरों ने मेरी इतनी सेवा की थी, अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो वो कहते हैं कृपया जो वानर मृत हो गए उनको पुनर्जीवित कर दीजिए। मृत वानर जीवित रामा, राम अशोक नाम आता है कि उन्होंने सब याचना की सब मृत वानर को जीवित कर जाए। और फिर कहते हैं कि ये जो वानर है, जब कोई सैनिक बनता है तो वो अपने परिवार, अपने सुविधा, अपने जान सबको त्याग करके राजा की सेवा में लगता है, और राजा को उसको प्रचुर मात्रा में धन आदि देकर उसको पुरस्कृत करना चाहिए। पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वानरों को कुछ नहीं दे पाया, तो इसलिए मेरे ओर से आप इन्हें दीजिए। तो यह प्रभु श्री रामचंद्र देवताओं से कहते हैं और विभीषण से भी कहते हैं, विभीषण भी देता है। और फिर बाद में वो कहते हैं मैं ये भी चाहता हूं कि ये वानर आज के बाद जहां भी रहे वहां पे कभी पानी और फल की कमी ना हो, ताकि वो हमेशा, अभी जो उनको मेरी सेवा में कमी हुई वैसे कभी कमी महसूस ना हो। तो यहाँ पे मैं कहने का भाव ये है कि अगर हमें भगवान की भक्ति देखनी है तो वो रामायण में भी स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, क्योंकि भगवान वहां पे धर्मनिष्ठ आदर्श व्यक्ति के रूप में भूमिका कर रहे हैं। फिर अगर हम महाभारत में देखते हैं तो महाभारत जो है वह ग्रंथ है, रामायण और महाभारत में एक प्रधान फर्क जो है कि रामायण में भगवान केंद्र है, पर महाभारत में भगवान केंद्र नहीं है, वहां पे पांडव केंद्र है, और वो जो संपूर्ण कहानी जो है पांडव पे केंद्रित है, और उसमें प्रभु भगवान कृष्ण जो है बार बार आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और अगर हम महाभारत के विश्लेषण अगर करते हैं तो उसमें देखिएगा कि हरेक महत्वपूर्ण प्रसंग में भगवान कृष्ण की या तो उपस्थिति है या उनका हस्तक्षेप है या उनका कोई ना कोई तो संबंध जरूर है, पर फिर भी भगवान केंद्र नहीं है। इसीलिए महाभारत के बाद में एक उसकी अपेंडिक्स आता है, उसको पुराणी कहते हैं, कि पूरा उसको कहा गया है हरिवंश। और हरिवंश नाम के ग्रंथ में जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का बड़ा वर्णन है, तो पांडवों का महाभारत में प्रधान से पांडवों का वर्णन है, और भगवान कृष्ण पे केंद्र नहीं है उसमें। तो इसीलिए अभी पांडव जो है क्या वे भगवान के भक्त है? बेशक वे भक्त है, पर महाभारत में भी कैसे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पे शिक्षण दिया गया है। इसीलिए जो पांडव है वह अभी जैसे हमको हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने खास करके शुद्ध भक्ति मतलब अनन्य भक्ति सिखाई है कि दूसरे कोई देवताओं की पूजा नहीं करना है, सिर्फ भगवान की पूजा करना है, तो उस प्रकार का जो भाव है वह अन्य वह हम महाभारत में नहीं देखते हैं। महाभारत में हम देखते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पे अलग अलग देवताओं की याचना करनी होती है अलग अलग चीजों के लिए। तो इसीलिए जब पांडव हम कई जगह पे देखेंगे वो दूसरे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। जब पांडव जंगल में होते हैं और उनको अन्न नहीं होता है तो उनको वो सोचते हैं कि हम तो जंगल से अन्न ले लेंगे, पर हमारे साथ इतने सारे ब्राह्मण हैं, उनके लिए अन्न का इंतजाम कैसे होगा? तो इसीलिए अपने जो पुरोहित होते हैं उनके धौम्य ऋषि, उनसे पूछते हैं। धौम्य ऋषि कहते हैं कि वास्तव में सभी जीवों को अन्न प्रदान करते हैं सूर्यदेव, इसीलिए आप सूर्यदेव की याचना करो और सूर्यदेव की याचना से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर जो युधिष्ठिर महाराज है, बहुत महाराज नहीं होते, युधिष्ठिर होते, वो तो वो एक नदी में प्रवेश करके वहां पे तपस्या करते हाथ ऊपर सूरज की ओर देखते हुए, और फिर कुछ ऐसे तपस्या करने के बाद सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और उनको फिर अक्षय पात्र देते हैं। तो इसी तरह से जिस भगवद्गीता में भगवान ने बताया है कि आपको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अल्पमेधसा है, वो कर्म बुद्धि वाले लोग हैं, वही भगवद्गीता के अंत में जब युद्ध चालू होने वाला होता है तो तभी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो युद्ध में विनाश होगा वह महाकाली देवी के कारण होगा और तुम उस देवी की प्रार्थना करो, उसके आशीर्वाद से तुम जरा यशस्वी हो जाओगे। तो तुम अपने अर्जुन अपने रथ से उतर जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं और वहां पर देवी प्रकट होते अपने हाथ ऊपर करते हो, कहते हैं तुमने मेरी याचना प्रार्थना की है तो मैं जरूर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, पर तुम्हारे साथ केशव है तो मेरे आशीर्वाद क्या जरूरत है, तुम्हारा जो विजय है वह पहले से ही पुनर्निश्चित है। पर यहां पे कहने का भाव यह है कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति मतलब जिस हम समझते कई और देवता की पूजा न करना, वह जो भाव है वह हम स्पष्ट रूप से महाभारत में नहीं देखते, क्योंकि महाभारत जो है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पे है, इसीलिए अलग अलग देवताओं की पूजा बताई गई। और हम महाभारत में ये नहीं दिखे कैसे कि पांडव कहीं कीर्तन कर रहे हाथ उठा के हरिनाम संकीर्त करते, ऐसे नहीं देखेंगे हम। और फिर साथ साथ वहां पे जो भक्ति भी करते हैं वो कैसे भक्ति है, वो अभी विग्रहों की पूजा का वर्णन है महाभारत में, और विग्रहों की पूजा करते हैं मंदिरों में, रामायण में भी मंदिर का वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो विग्रहों की पूजा है यह बहुत प्राचीन पद्धति नहीं है, ये कुछ सैकड़ों सालों पहले ही आई थी। कुछ ऐसे तर्क वितर्क लोग कहते हैं कि पहले यह बुद्ध धर्म में आई थी और बुद्ध धर्म से वैदिक धर्म में आई है, पर नहीं, बौद्ध के जीवन के पहले भी विग्रह पूजा थी। पर पांडव जो भक्ति करते हैं वह हम देखते हैं कि वह जैसे हम बैठ के 16 माला जप करते हैं ऐसे पांडव नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका ऐसे नहीं कि वह भक्त नहीं है, वो महान भक्त है और कई प्रसंगों में उनकी भक्ति बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कि द्रौपदी कैसे भगवान को पुकारती है, अर्जुन को जब सारे नारायण सेना मिल रही, नारायण सेना को त्याग के वह नारायण को चुनते हैं, कृष्ण को चुनते हैं, ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनकी भक्ति प्रदर्शित होती है। पर भक्ति कैसे करनी है उसका वर्णन विस्तारित रूप से महाभारत में नहीं है। यहाँ महाभारत में कैसे दर्शाया गया है कि जो भक्त है, जो धर्म के अनुसार जीवन जी रहे, भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं आती है तो भगवान उनको कैसे मदद करते हैं उसका वर्णन किया गया है, पर भक्ति की साधना पे उस पर ज्यादा जोर नहीं है। तो ये हो गया, हमने सबसे पहले देखा भगवद्गीता देखी, फिर उसके बाद में हमने इतिहास देखे। अब इतिहास और पुराण, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों एक तरह से ऐतिहासिक है, पर फर्क यह है इतिहास और पुराण में कि इतिहासों में, मतलब इतिहास कौन कौन से, दो इतिहास है, रामायण और महाभारत, दोनों को इतिहास कहा गया। तो इन दोनों में जोर है कि एक परिवार पे, एक वंश पे। तो महाभारत में एक वंश जो पांडव है या भारत वंश है, जो रामायण है उसमें राम आयन, आयन मतलब सफर, राम का सफर रामायण का, तो फिर राम पे केंद्र है। पर इसके विपरीत जो पुराण होते हैं, पुराणों में कोई एक वंश पे केंद्र नहीं होता है, एक व्यक्ति पे केंद्र नहीं होता है। साधारण सब पुराणों का जो शुरुआत, पुराणों की शुरुआत होती है वह ऋषि मुनियों में प्रश्नोत्तर से होती है, और उनके प्रश्नोत्तरों में अलग अलग प्रकार की सवालों के उत्तरों के संदर्भ में कहानियां बताई जाती है, और वो कहानियां जो अलग अलग युगों के बारे में हो सकती है, अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में हो सकती है। तो इस तरह से बाकी सब जो पुराण है उनमें हम पता है 18 पुराणों में 6 पुराण सत्वगुण में है, 6 रजोगुण में है, 6 तमोगुण में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 पुराण तामसिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह पुराण अछूत है, ऐसा मतलब नहीं है उसमें। और ऐसे भी नहीं है कि तामसिक पुराणों में कृष्ण का वर्णन नहीं है, कृष्ण का वर्णन भी है उसमें, विष्णु का वर्णन भी है, शिव जी का भी वर्णन है, पर उसमें जो व्यक्ति तामसिक है वह किस चीज, किस दृश्य से चीजों को देखेगा और उसको क्या मनमोहक लगेगा उसके दृष्टि से वो कहानियां बताई गई। मतलब अगर वही चीज है उसको व्यक्ति, मान लीजिए एक बस में जा रहे हैं तीन व्यक्ति जा रहे हैं, तीनों खिड़की के सीट में बैठे, एक के पीछे एक, एक सत्वगुण में है, दूसरा रजोगुण में है, तीसरा तमोगुण में है, तो तीनों खिड़की से बाहर देखते हैं, बाहर सुंदर हरियाली है और वहां पे ठंडी हवा आ रही है, बड़ा आकर्षक वातावरण लग रहा है। तो वहां पे अगर पहला जो व्यक्ति सत्वगुण में है वह बस में बैठ के कोई ग्रंथ पढ़ रहा है और तो बस हिल रही है, बस में आवाज आ रहा है और वो हरियाली की ओर देखता सोचता है कितनी शांति है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस ग्रंथ के ज्ञान में पूरी तरह से मग्न हो सकता। उसके पीछे दूसरा व्यक्ति है रजोगुण में है, तो वो जैसे ही वो हरियाली को देखता है, जंगल को देखता है, फूलों को देखता है, उसने अभी जो बॉलीवुड मूवी देखा था उसमें हीरो हीरोइन कैसे जंगल में नाच रहे थे हरियाली के बीच में, वो याद आता है, वो सोचता है कि मेरे साथ कोई होगा तो मैं भी यहाँ पे ना ऐश करूंगा। तो तीसरा व्यक्ति तमोगुण में है और वो वहां पे बस में बैठ के सोने का प्रयास कर रहा है, बस कूद रहे है, सो नहीं पा रहा है, वो हरियाली देखता है, हो जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो वास्तव में तीनों एक ही चीज को देख रहे हैं पर उनके गुण के प्रभाव के कारण वो उनको अलग अलग पद से देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से सात्विक राजसिक तामसिक पुराण में क्या है कि वही सत्य है पर उसको अलग अलग व्यक्ति के पहलू से बताया गया है, तो इसीलिए जो तामसिक व्यक्ति है उसको विनाश अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो विनाश के दैवत जो है शिवजी, ऐसे दर्शाया गया है तामसिक पुराणों की शिवजी ही सर्वश्रेष्ठ है। और सात्विक पुराण जो है उनमें कैसे विष्णु सर्वश्रेष्ठ है इसको स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और कोई बोलेगा इसे तो सब कुछ मोह में पड़ जाएगा कौन सा सत्य है, पर तामसिक पुराणों में ही ऐसे वर्णन आता है कि अगर तामसिक और सात्विक पुराणों में भेद होता है तो सात्विक पुराण का सत्य है वह ऊंचा सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अगर हम चैतन्यचरितामृत में तो चैतन्य महाप्रभु पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक एक पुराण लेगा और उस पे उससे संशोधन करने का प्रयास करेगा ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, तो वो बड़ा मोह में पड़ा रहेगा, पर अगर संपूर्ण सब पुराणों का वो एक पूर्णतया दृष्टि से विश्लेषण करता है तो समझ जाएगा कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए अगर हम पुराणों में देखते हैं तो अगर कोई तामसिक पुराण पढ़ेगा या राजसिक पुराण पढ़ेगा तो जो परम सत्य है वह समझ नहीं पाएगा, और जो सात्विक पुराण है उसमें जो विष्णु है उनके सर्वश्रेष्ठत्व का जरूर स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। पर सात्विक अभी कैसे है, जो 18 पुराणों के बारे में वर्णन है उसमें भागवत पुराण भी है, पर यह भागवत पुराण के होते हुए ऐसे बताया गया है कि सारे पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव उदास रहे थे, तो फिर अगर उन्होंने भागवत की रचना कर दी है तो फिर वो उदास क्यों है, तो ऐसे बताया गया है आचार्य ने बताया कि उन्होंने जो भागवत पुराण की रचना की थी तभी वह भागवत उन्होंने बाकी चतुर्गुणी पुराण जैसे है उसके जैसे ही वर्णित किया था। मतलब क्या, यशो भगवते अमले, भगवान का अमल यश जो था वह स्पष्ट रूप से ने प्रस्थापित नहीं किया था। मतलब अगर हम देखेंगे कि बाकी पुराणों में कृष्ण लीला है पर वो कृष्ण लीला में कुछ मल है, मतलब कैसे दिखाया गया, भगवान की लीला बताई गई है पर ऐसे बताया है कि भगवान ने इस असुर को हराया क्योंकि उस असुर को हराने के पहले भगवान ने इस देवता की तपस्या की थी और उस देवता के आशीर्वाद से भगवान ने उस असुर को हरा दिया। तो वास्तव में यह तो सत्य नहीं है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसे क्यों बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अभी तक परम सत्य के लिए तैयार नहीं है उनको उनके स्तर से ऊपर उठाने के लिए मदद करने के लिए बताया गया है। तो जो शास्त्र है वह गुह्य है और उनको समझना है तो हमें जरूर एक गुरु चाहिए। कैसे होता है ये, कभी कभी हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जो पाश्चात्य धर्मों के ग्रंथ है वो एक पॉकेट डिक्शनरी के समान है और जो वैदिक शास्त्र है वो एक बड़े बड़े विशाल डिक्शनरी के समान है, तो उससे हम सोचते हैं कि हाँ हमारे शास्त्र बहुत बड़े हैं, उससे हमें गर्व हो सकता है, पर वास्तव में ये सिर्फ गर्व की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ी डिक्शनरी आ जाएगी, अगर अभी आजकल तो सब डिक्शनरी ऑनलाइन हो गए हैं, तो एक शब्द आप दोगे तो उसके अर्थ, अभी मैं एक शब्द देखा था, एक अनब्रिज डिक्शनरी है, तो एक शब्द के जो अर्थ है वो 50 पेज होते हैं। एक शब्द के अर्थ, अभी जहां तक मुझे पता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एक शब्द के सबसे ज्यादा अर्थ है कितना, 70,110 एक शब्द के अर्थ है।
और ये इंग्लिश में है। तो अगर संस्कृत तो और जटिल भाषा है, तो उसे एक शब्द कितने अर्थ हो सकते हैं।
तो अभी ये अर्थ कैसे निकालते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि जो अर्थ होते हैं वह शब्दों के अर्थ डिक्शनरी में होते हैं, पर ऐसे नहीं है। शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो लोगों के वार्तालाप के अनुसार फैसला होता है उनका। तो लोग अलग अलग प्रकार से जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो इसीलिए अभी अभी अंग्रेजी अभी जो विकेड विकेड शब्द था, इसका साधारणतः अर्थ था क्रूर, पर अभी आजकल के संस्कृति में क्या है, विकेड मतलब अच्छा बोलते हैं, दैट वाज अ विकेट वड़ा पाव। बढ़िया वड़ा पाव था, तो उसको क्या कहते हैं, विकेट वड़ा पाव। तो क्या है, वही शब्द का अर्थ समय बदलता है तो अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए जो है, अगर अनब्रिज डिक्शनरी है तो वो डिक्शनरी लेके अगर हम अर्थ समझना है और कोई ग्रंथ पढ़ना है तो व्यक्ति पूरा मोहित हो सकता है। जैसे मैंने मेरे मृत्यु पूजा के विग्रह पूजा के किताब में बताया कि एपिथेट नाम का एक शब्द है इंग्लिश में, एपिथेट, उस शब्द का अर्थ, एक अर्थ है गुणगान और दूसरा है अर्थ है अपमान, बिल्कुल विरुद्ध अर्थ है, एक ही शब्द है उसके विरुद्ध अर्थ है। तो इसीलिए अगर हम केवल डिक्शनरी के आधार पर शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति ने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, जिसने वो डिक्शनरी के उपयोग के बारे में अनुभव है, फिर वहां में उसी तरह से बोल सकता है कि हाँ ठीक है, इस संदर्भ में इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हम जब कहते हैं कि वैदिक शास्त्र ये एक ऐसे असीमित विशाल डिक्शनरी शब्द कोश के समान है, उसका अर्थ ये है कि उसमें अलग अलग स्तर के लोगों के लिए धर्म के सिद्धांत बताए गए। सो द इट इज द वैदिक स्क्रिप्चर्स आर ओमनीफॉर्म, हम यूनिफॉर्म कहते कि सब एक वस्त्र पहने हुए, यूनिफॉर्म एक रूप है सबका। तो मल्टीफॉर्म मतलब अनेक रूप है, पर ओमनीफॉर्म मतलब सर्वरूप है। तो वैदिक शास्त्र जो है वो ओमनीफॉर्म है, मतलब क्या कि उसमें हर स्तर के व्यक्ति के लिए उसका कैसे उद्धार हो, उसके स्तर से वो कैसे ऊपर उठ सकते, इसके बारे में शिक्षा दी गई है। तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में कौन सी शिक्षा किस स्तर के व्यक्ति के लिए है, और यह समझना बड़ा मुश्किल है। स्वयं अगर कोई पढ़ने लगे वैदिक शास्त्रों को तो वह पूरा मुंह में पड़ जाएगा। इसीलिए कुलशेखर महाराज अपने मुकुंदमाला स्तोत्र बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नारायण की स्मृति नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं आमनाया भेसनान्यरण्य रुदितम, वो कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना ये क्या है, जंगल में रोने के समान है। अगर कोई छोटा बालक है जंगल में घूम गया, रोने लग जाएगा, अब जंगल में सुनने के लिए कोई है ही नहीं उसको रोने को, कितना भी रोके क्या फायदा। तो वो कह रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन जंगल में रोने के समान है, क्योंकि शास्त्र इतने विशाल है, क्या है, शब्द जाल महारण्यम न भुक्तये न मुक्तये। शब्द जाल क्या है, महारण्य है, और ऐसा अरण्य उसमें कोई फंस गया न भुक्तये, भोग भी नहीं कर सकता है न मुक्तये, मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जो वैदिक शास्त्र है उनको समझना है, उनको गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बिना व्यक्ति अगर गुरु शास्त्र पढ़ेगा तो किस कुछ स्तर पे होगा, उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर उनका जो अंतिम सिद्धांत है वह समझना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो इसीलिए हम देखेंगे बाकी पुराणों में भी भगवान के बारे में, सात्विक पुराणों में भगवान के बारे में वर्णन है और भगवान के भक्ति के बारे में भी वर्णन है, पर उसको जो है वो अमल भक्ति नहीं है। उसमें कभी बताया कि भगवान भक्ति कर रहे हैं, भगवान के लोग भक्ति कर रहे हैं और कुछ भगवान भी किसी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा कभी मोह हो सकता है, पर जो भागवतम है इस प्रकार का मल नहीं है, अमल है। पर भागवतम जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से भगवान और भक्ति दोनों के बारे में वर्णन है, पर उसके साथ साथ भागवतम में एक और विशेष बात है कि भागवतम जो संकलन हुआ था वो 5,000 साल पहले हुआ था, और जो 5,000 साल पहले संकलन हुआ तो उसके पहले जितनी भी कहानियां हुई है, भगवान की लीलाएं हुई हैं, उसके आधार पे वर्णन हुआ है। तो इसीलिए भागवतम में अधिकांश रूप से जो कहानियां हैं उसमें हम देखते हैं कि जो धर्म हो रहा है, जो भक्ति भी हो रही है, वो कैसे हो रही है, पूर्व युगों की साधना के अनुसार। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतोमखै कापारे परिचर्यायाम। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो ध्रुव महाराज है वो योग साधना है, वो भक्ति ही कर रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य विष्णु है, पर उनकी साधना क्या है, वो नाच गा नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वह ध्यान में, योग ध्यान में, योग में ध्यान प्राप्त करके फिर भगवान का श्रवण कर रहे, भगवान के प्राप्ति कर रहे हैं। उस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग भी है, प्रहलाद महाराज भी है, अभी अभी वो जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो श्रवण कीर्तन करते हैं। तो जो अगर पूरे भागवत में देखेंगे हम जो अलग अलग भक्तों का की बारे में वर्णन आता है, भीष्म पितामह की महान भक्ति के बारे में, कुंती महारानी की महान भक्ति के बारे में वर्णन, कैसे वो मृत्युशैया में या बड़े विपत्ति की अवस्था में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वर्णन है, पर वह भक्ति की साधना क्या कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है इतना। और फिर गोपियों की जो कहानी, गोपियां और रजवासी जो है दशम स्कंद में, वह भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, पर वह जो भक्त, वो जो वृंदावन के भक्त है वह साधक भक्त नहीं है, वह सिद्ध भक्त है, इसीलिए वे साधना नहीं कर रहे, वे क्या कर रहे, सीधी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में हमेशा भगवान के स्मरण है वो। तो ऐसे नहीं है कि वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पर भगवान का नाम लेने की जो साधना है जो हम करते हैं 2 घंटे बैठ के, वैसे गोपियों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे हमेशा भगवान के स्मरण कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान का नाम वो लेते रहते हैं, जैसे गोविंद दामोदर सुत में बताया गया कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले रहे हैं। विक्रे तुकामा किल गोप कन्या, वो कह, जब वो दुकान बाजार में जाते हैं कुछ बेचने के लिए, तो कोई उनको पूछता है कि आप ये दही बेच रहे हैं, दही की कीमत कितनी है, तो वो दही देखते हैं और याद करते हैं कि भगवान के तब दही प्रिय है, तो दही की कीमत बोलने के लिए गोविंद बोलने की जगह पे गोविंद दामोदर माधवेती बोल देते हैं। तो हमेशा वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे, पर जो साधना है वह वे नहीं कर रहे एक तरह से देखा जाए। तो इसीलिए जो हमारे आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथ दिए हैं, अभी हमने देखा भगवद गीता देखी, भागवतम देखा, पुराण देखे, इतिहास देखे और भागवतम देखा। भागवतम में जो है भक्ति की साधना के बारे में जरूर स्पष्ट रूप से वर्णन है, पर वह जो भक्ति की पद्धतियां है वो अलग अलग है। और जो कलयुग की साधना है हरिनाम संकीर्तन, उसके जो सबसे करीब जो आते हैं भागवतम में वह है प्रहलाद महाराज और उनके मित्र। प्रहलाद महाराज उनको श्रवण कीर्तन कराते हैं और फिर ऐसे बताया कि वो सब नाचने गाने लगते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, उसके कारण षंडामर्ग जो है वो विचलित हो जाते हैं। और फिर जो कीर्तन का, नाचने का, गाने का जो स्पष्ट, सबसे स्पष्ट उल्लेख जो है वह उद्धव गीता में आता है। उद्धव गीता में 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कि व्यक्ति जब भगवान के भक्ति व्रत से करने लगता है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, वह अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करता है और फिर उन्मादयंती गायंती लोक बाह्या, वो उन्माद में होकर नाचने लगता है, गाने लगता है लोक बाह्या, बाकी सब लोगों के बारे में कुछ चिंता नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। तो इस तरह से भागवतम में जो वर्णन है वो आ रहा है भक्ति का। पर जो भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ लिखा, उसके बहुत ही विशेष महत्व है। तो क्या है कि भक्ति, भक्ति महान है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसका वर्णन सब शास्त्र में, बहुत शास्त्र में आता है। भक्त्यां जानाति यावान् याचित भगवद्गीता में बताया गया, भगवद्गीता में 11वें अध्याय के 53वें 54वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कोई और मार्ग नहीं चलेगा, ना हम वेद न तपसा न दान न चेज्या, और फिर कहते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्य हमें विदो अर्जुन। उस तरह से वर्णन है बहुत से लोगों के लिए कि कैसे बहुत शास्त्र में कि भक्ति ही करनी चाहिए, पर भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन इतना स्पष्ट रूप से किसी शास्त्र में नहीं है। अभी ना जैसे कैसे है कि जो वेदांत सूत्र है वो वेदांत का विषय क्या है, ब्रह्म ने, तो इसलिए वेदांत सूत्र के शुरुआत में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के सूत्र है, जैसे मीमांसा के सूत्र है उसका शुरुआत है अथा तो धर्म जिज्ञासा, शांडिल्य के भक्ति सूत्र है उसका अथा तो भक्ति जिज्ञासा। तो इसीलिए अलग अलग शास्त्रों के शुरुआत में उनकी जो महत्व, उनका जो महत्व है उसके अनुसार कैन इंक्रीज द फैन ऑल्सो इफ यू वांट. फैन भी आप बढ़ा दीजिए. तो उसमें अलग अलग शास्त्रों के अनुसार उसका जो विषय है उसके अनुसार सवाल होते हैं. तो ऐसे भक्ति के बारे में वर्णन अलग अलग शास्त्रों में है, पर रूप गोस्वामी पाद ने ऐसे अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग वर्णन है भगवान के भक्ति के बारे में, उन सबको एक जगह पे संकलित करके उसको एक रचना दी, एक स्ट्रक्चर दिया है. इसीलिए वैदिक शास्त्रों में भी मेरे से अनेक शास्त्र, उसमें से रूप गोस्वामी का जो भक्तिसाम सिंधु है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शास्त्र में हमें भक्ति कैसे करनी है उसका एक वैज्ञानिक रूप से वर्णन दिया है. तो कैसे होता है, अगर हमें कुछ सिखाना होता है तो इसे कहते हैं उसको देर आर प्रिंसिपल्स एंड देर आर एग्जाम्पल्स. प्रिंसिपल मतलब तत्व होता है और एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है. तो तत्व है और उदाहरण है. तो क्या होता है, कुछ ग्रंथों में जैसे कि वेदांत सूत्र है या फिर उपनिषद है, उनमें तत्व पे जोर है, उनमें सिद्धांत सब कुछ बताया गया है, पर उसमें उदाहरण बहुत कम है. वेदांत सूत्र में कोई लीला नहीं है, किसी का गुणगान नहीं है, किसी व्यक्ति के चरित्र का वर्णन नहीं है. वेदांत सूत्र में प्रधान रूप से क्या है, प्रधान रूप से सिद्धांत है. इस तरह से उपनिषदों में भी ऐसे ही है. तो वहां पे तत्व अधिक है. पुराणों इतिहास में क्या है, उदाहरण बहुत है, पर उदाहरणों से तत्व जो है वह भी है. भागवतम में हम देखते हैं कि तत्व ज्ञान भी बहुत है, पर अगर हम तत्व ज्ञान के बारे में देखेंगे तो भागवतम में तत्व ज्ञान के जो विभाग है दो प्रधान विभाग है. एक है उद्धव गीता जो कि लगभग छठे अध्याय से तीसवें अध्याय तक आती है, 11वें स्कंद 25 अध्याय है, भगवीरा से वो बड़ी है. वही संपूर्ण भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान का विभाग है. उसके बाद में जो है सांख्य की शिक्षा है तीसरे स्कंद में, और उसके बाद में अलग जगह पे भागवतम का तत्व ज्ञान आता है. पर भागवतम में अधिकांश रूप से लीलाएं बताई गई है. तो पर क्या है कि हर बार ऐसे नहीं है कि जैसे अजामिल की कहानी आती है, तो अभी अजामिल की कहानी के पहले सवाल है कि कोई लोग पापों के नरक में जाने वाले तो उससे कैसे बचेंगे, और फिर उसके अलग अलग मार्ग बता के फिर भक्ति का नाम मार्ग बताते हैं, और फिर भक्ति उसके लिए उदाहरण अजामिल का दिया जाता है. तो इस तरह से हर एक लीला किसी तत्व का उदाहरण के लिए बताई जा रही है, पर जो लीला और तत्व का जो विश्लेषण हो रहा है वो ऐतिहासिक प्रश्नोत्तरों के आधार पर हो रहा है. उसके कारण क्या है, वो सारे प्रश्नोत्तरों को एक बहुत नियमबद्ध रचना नहीं है. मान लीजिए कोई वक्ता है, प्रवचन देते हैं. अगर वो प्रवचन देते हैं तो वो विचार करके आते हैं, ठीक है मैं आज ये 4-5 पॉइंट बोलने वाला हूँ, फिर ये पॉइंट के लिए उदाहरण है, ये पॉइंट के लिए उदाहरण, ये पॉइंट के लिए उदाहरण है. तो इस तरह से होता है. तो फिर क्या, वो एक प्रवचन को एक रचना होती है. दूसरी ओर से अगर कोई प्रवचन होता है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन, सिर्फ प्रश्नोत्तर है उसमें, तो अभी उसमें भी रचना है, हर एक प्रश्न के उत्तर में रचना है. पर एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न कोई कौन कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, और पहले और दूसरे प्रश्न में जरूर संबंध है या नहीं है, और फिर पूरे जो प्रवचन की रचना होगी वह रचना समझना मुश्किल हो जाएगा. तो जो भागवतम जो है वो क्या है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी नशान के ऋषि, इनमें प्रश्नोत्तर है. और वो प्रश्नोत्तर भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नियमबद्धता उनमें नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ये प्रश्नोत्तर है इसीलिए उसमें जो एक नियमित पद्धति से जो सिद्धांत है वह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पर इसके विपरीत अगर हम भक्ति साम सिंधु देखते हैं, वह कैसे है, वह ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग प्रोग्राम जैसे है, पूरा नियमबद्ध पद्धति से, ठीक है. रूप गोस्वामी विचार करते हैं और विचार करने के बाद वो कहते हैं, सोचते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षाएं दी है मुझे, तो इसीलिए उसके बाद में वो फैसला करते हैं कि अभी ये सब शिक्षाओं का मुझे विस्तार करना है, और फिर उसके लिए वो अलग अलग शास्त्र का पढ़ते हैं और उससे उदाहरण निकालते हैं. नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण सद्धर्म संतापक. तो अभी हम देखते हैं कि एक विशेष बात है कि रूप और सनातन गोस्वामी के संबंध में उन दोनों बड़े भाई कौन है, सनातन गोस्वामी, पर उन दोनों में से जो सीनियर गॉड ब्रदर है वो रूप गोस्वामी है।
बड़े गुरु भाई रूप गोस्वामी, क्यों? क्योंकि वह पहले भगवान की शरण में जाते हैं और फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी जाना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी क्या होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको बच के आना पड़ता है, तो काफी समय लग जाता है। तो अभी हम देखेंगे अगर चेतन चरितामृत में छह प्रधान संवाद है, तो उसमें सारोम भट्टाचार्य प्रशांत सरस्वती का संवाद है, फिर रामानंद राय के साथ संवाद है, फिर रूप सनातन गोस्वामी के साथ संवाद है। तो उसमें जो रूप गोस्वामी का संवाद है वह चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय में आता है, मध्य लीला के। और फिर जो 20 से 24 अध्याय है वह सनातन गोस्वामी का उपदेश है, सनातन उपदेश दिया है। और फिर उसके बाद में 25वें अध्याय में जो काशीवासी के काशी के सन्यासी का उद्धार होगा उसके बारे में वर्णन है। तो काशी के सन्यासी का उद्धार जो है उसका वर्णन दो बार आता है चैतन्य चरितामृत में। पहले बार आता है आदि लीला में 7वें अध्याय में और दूसरी बार आता है मध्य लीला के 25वें अध्याय में। ये दो जगह पे क्यों है, एक जगह पे वो तत्वज्ञान के रूप पे आ रहा है, दूसरी जगह पे आदि लीला में वो तत्वज्ञान के रूप पे आ रहा है, मतलब वहां पर बताया जा रहा है कि जब वो कैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है और परम सत्य एक व्यक्ति है, उसको प्रस्थापित करने के लिए वे सारोम भट्टाचार्य वे प्रकाशान सरस्वती का संवाद बताते हैं कृष्णाष्टक के 7वें अध्याय में। पर जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हो रहा है तभी 25वें अध्याय में वो वर्णन आता है। तो यहाँ पे मैं कहने का उद्देश्य क्या है कि इनके प्रति इनके चैतन्य महाप्रभु का उपदेश रूप गोस्वामी को एक अध्याय का है, पर उनका उद्देश्य सनातन गोस्वामी का लगभग 5 अध्यायों का है। पर और हम जानते हैं चेतन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश कितना दिया, एक हफ्ते के लिए दिया, सनातन गोस्वामी को दो महीने के लिए दिया उपदेश। तो पर इसके बावजूद अगर हम ग्रंथ देखते हैं तो सनातन गोस्वामी से अधिक ग्रंथ रूप गोस्वामी लिखे हैं। तो ऐसे क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ है, तो वो लघु भागवतामृत है या फिर भक्तिसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, ये सब रूप गोस्वामी लिखे हैं। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कि कृष्ण भावनात्मक आंदोलन जो है ये रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है, के अधीनता में चल रहा है। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जो थे वो सोचते थे कि रूप गोस्वामी वरिष्ठ है, क्योंकि उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को शरण लिया है। इसीलिए गोस्वामी के सब जो ग्रंथ थे वो वास्तव में ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे कि ये मेरा ग्रंथ है ये तुम्हारा ग्रंथ है, ऐसे नहीं है। वो सब वो चर्चा करके फिर वो ग्रंथ लिखते थे। तो इसीलिए रूप गोस्वामी चैतन्य गोस्वामी जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी थी उसका विस्तारित रूप से चर्चा करके फिर उसको लिखने में लग गए। और जब लिख रहे थे वो तो रूप गोस्वामी ने अधिक ग्रंथ लिखे, सनातन गोस्वामी जो उन्होंने सिखाया था वो भी उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया, रूप गोस्वामी ने ग्रंथों में लिख दिया। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत लिखा, अनेक ग्रंथ उन्होंने भी लिखे हैं, रूप गोस्वामी अधिक लिखे हैं। और वास्तव में जब जीव गोस्वामी आते हैं वृंदावन में तो वो सबसे बड़े सनातन गोस्वामी जाते हैं, वो कहते हैं वो मेरे सबसे बड़े चाचा है, तो उनके शरण लेना चाहते हो। सनातन गोस्वामी कहते नहीं, रूप गोस्वामी की शरण, वो वरिष्ठ गुरु भाई है। और फिर वास्तव में रूप गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, सिर्फ जीव गोस्वामी को छोड़ के। और ऐसे भी क्यों है, क्योंकि वृंदावन जो था वहां पर ब्राह्मण संस्कृति बहुत थी, और इसीलिए ब्राह्मण संस्कृति होने के कारण, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी वे पहले म्लेच्छ परिवार में सेवा कर रहे थे, म्लेच्छ बन गए थे एक तरह से, मुस्लिम बन गए थे, तो इसीलिए उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति में बहुत रूढ़ी थी वहां पे, तो इसीलिए उन्होंने संन्यास स्वीकार नहीं किया, कि संन्यास ब्राह्मणों के लिए ही होता है और अगर कोई ब्राह्मण जाति त्याग दिया है तो उसको संन्यास लेना उस समय के लिए उचित नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने संन्यास नहीं लिया, उन्होंने गोस्वामी वेश धारण किया, और उसके कारण उन्होंने गोस्वामी वेश धारण किया, इसीलिए बाकी सब जो वहां पे भक्त थे वे भी कहने लगे थे गोस्वामी तो ये जो सबसे चैतन्य महाप्रभु के वरिष्ठ भक्त थे, बहुत निकटतम भक्त थे, अगर वो संन्यास नहीं स्वीकार करे तो हम संन्यास कैसे स्वीकार कर सकते। इसीलिए हमारी परंपरा में जो परमहंस भक्त थे वो संन्यास लेने की जगह पे गोस्वामी वेश स्वीकार करते, बाबाजी वेश स्वीकार करते, गोस्वामी बनके बाबाजी वेश स्वीकार करते थे, उन्होंने बाबाजी वेश स्वीकार किया। तो जीव गोस्वामी ने भी, क्योंकि वे भी उसी परिवार में थे और तो इसीलिए उन्होंने भी किसी को दीक्षा नहीं दी। जीव गोस्वामी के बहुत महान भक्त, जो महान भक्त उनके शिक्षा शिष्य थे, हम देखते 3 महान प्रचारक थे, कौन थे वो, नरोत्तम दास ठाकुर,
श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये तीनों जीव गोस्वामी से बहुत आसक्त थे और जीव गोस्वामी उनके एक तरह से गुरु के समान थे, क्योंकि जो सिद्धांत की शिक्षा थी, आचरण की शिक्षा थी, तर्क वितर्क की शिक्षा थी, सब कुछ उन्होंने ही दिया था उनको। और फिर वो बड़े आनंद से वृंदावन में रहते, तो उनके तो जीवन की पराकाष्ठा थी वो, कि वो वृंदावन में पहले से वास कर रहे हैं, अपने गुरु का भी संग प्राप्त कर रहे हैं, व्यवहारिक उनके लिए गुरु ही थे। जीव गोस्वामी ने एक दिन क्या कर दिया, उनके सीने पर प्रहार कर दिया, बजे का बोले कि वृंदावन छोड़ के आप बंगाल चले जाओ और वहां पर जाके आप प्रचार करो। तो उनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी छोड़ के जाने की, क्योंकि गुरु का आदेश है, इसलिए गुरु के आदेश की पूर्ति करके वो चले गए वहां से। पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि रूप गोस्वामी ने जो भक्तिसागर सिंधु लिखा है वह बहुत ही विशेष ग्रंथ है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, हरेक बड़े ही रचनावत पद से हरेक तत्व का वर्णन तुरंत एक उदाहरण के साथ दिया, तत्व उदाहरण, तत्व उदाहरण, तत्व उदाहरण। और फिर इसके साथ साथ जो हमारे आचार्य है, अभी रूप गोस्वामी ने जो लिखा भक्तिसागर सिंधु, उस पर हमारे अनेक आचार्यों ने विवरण वर्णन किया है, टिप्पणी की है। तो भक्तिसागर सिंधु पे और उसका विश्लेषण भक्ति संदर्भ में शरद जीव गोस्वामी किया है। और फिर भक्तिसागर सिंधु पे एक भाष्य लिखा उन्होंने, उसका नाम था दुर्गम संगमणि टीका, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। और इस तरह से इस ग्रंथ में जो भक्ति का विश्लेषण है वह लगभग पूरे विश्व के इतिहास में अद्वितीय है, क्योंकि भगवान को प्रेम करना है सब धर्मों में बताया गया है। पर जैसे भौतिक जगत में बोलते हैं कि जो प्रेम है वो कहते हैं ये तो एक फीलिंग है, कि कोई चित्रपटों में दिखाते हैं वो कि एक लड़का एक लड़की को देखता है, एक लड़की एक लड़का, तो दोनों प्रेम में गिर जाते हैं। तो क्या लोग सोचते हैं कि प्रेम ये एक स्वाभाविक चमकने वाली चिंगारी के समान है, तो आ गया प्रेम तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया, ऐसे लगता है। पर कि प्रेम एक विज्ञान के रूप में धीरे 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 कैसे विकसित किया जा सकता है उसका वर्णन कहीं नहीं है। तो इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, वैदिक शास्त्रों में बताया कि भगवान को प्रेम करना चाहिए, पर भगवान के प्रति प्रेम स्तर पर स्तर पे एक एक पद लेते हुए कैसे जागृत करना है उसका वर्णन बहुत कम जगह में है। और ऐसा वो जो वर्णन है वो भक्तिसागर सिंधु में है, और भक्तिसागर सिंधु में जो शिक्षाएं हैं उसको ये जो है वह बहुत ही सुंदर शिक्षा है, और भक्ति में हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ा सकते हैं, भक्ति की समझ श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। और उसकी जो पार्श्वभूमि है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर ने जो वर्नैक्युलर जो प्रदेश की भाषा थी बंगाली, उसमें वर्णित किया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने जैसे उदाहरण है, उनकी नरोत्तम दास ठाकुर का एक किताब है, उसका नाम है प्रार्थना, भक्ति विनोद ठाकुर की किताब है, एक गीतावली नाम है, एक शरणागति नाम है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, जो तत्व रूप गोस्वामी ने भक्तिसागर सिंधु में बताया है उनको कविताओं के गीतों के रूप में सरल भाषा में बताया है, और ये सरल भाषा में, और खास करके सरल भाषा और तीव्र भावना, ये दोनों जब साथ में आते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है हमारे हृदय पे बहुत होता है। जो वैष्णव गीत है, प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ये जो है वैदिक शास्त्रों से अभिन्न है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों का अंतिम जो उद्देश्य है वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, भगवान की प्राप्ति करना है, वही भगवान की प्राप्ति करने का जो उद्देश्य है वह यह ग्रंथ भी पूरे करते हैं। और पर यह पूरे जरूर करते हैं, पर उसके साथ साथ विशेषता क्या है, क्योंकि ये सरल भाषा में है और तीव्र भावना से भरे हुए हैं, इसके कारण इनमें से जो भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है वह बहुत ही स्वाभाविक और प्रखर रूप से जागृत होती है। प्रखर मतलब उससे हमारे बाकी सब वासनाएं कामनाएं हैं वो सूख जाती है एक तरह से। तो यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे वंश में हमें चल व्हाट इज लेगेसी, लेगेसी हेरिटेज, हमारे धरोहर, दायभाग, दायभाग संस्कृत शब्द है, धरोवर, धरोवर, धरोवर मिली है हमें। तो यह जो है इस पर चिंतन करके, इसको स्मरण करके, इसको गा के हम हमारे भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। और खास करके अनेक अभी जो वैष्णव गीत है, हमें दो तीन ग्रंथ हमारे पास है, पर हमारे आचार्य और भक्तों ने इतने सारे गीत लिखे। अभी मेरे कुछ मित्र है वो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में संशोधन कर रहे हैं, और फिर वो बंगाल में अभी भी जाते हैं जो पारंपरिक गौड़ीय वैष्णव है उनके घरों में अभी भी ऐसे ग्रंथ पड़े हुए, कोई देख नहीं रहा उनके ग्रंथों के, उसमें क्या है आचार्यों के गीत है, आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ है, वैसे तो अभी भी मिल रहे हैं। अभी बलदेव देवश ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, तो अभी कुछ एक दो साल पहले ही वो किताब वापस मिल गया। तो वो क्या है, ऐसे ही पता हुआ था किसी ने, पता ही नहीं, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो वो अभी हमारे जो दाएं भाग है वो हमें खोज के मिल रही है। पर जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वो बड़े ही एक्सेसिबल ऐसे पद्धति में दिया है कि हम साधारण पद्धति से वो समझ सकते हैं और उसको हमारे जीवन में अनुशीलन कर सकते हैं। तो जो हमें सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, भक्ति, वो भगवीता बताती है, और उसके बारे में जो अनेक कहानियां जो है भागवतम और पुराण और इतिहास बताते हैं। पर ये तत्व और उदाहरण, इन दोनों का समन्वय जो है वह भक्ति साम सिंधु में आता है, और इनका एक सरल भाषा में और भावनात्मक स्तर पे कैसे हमें भक्ति की भावना जागृत करना है वह समझाना, वह जागृत करना हमारे हृदय में, वह वैष्णव गीतों से आता है। इस तरह से हमारे वैदिक शास्त्रों में गुरु साधु शास्त्र इनके समन्वय से हमें बड़े सरलता से भक्ति में, भक्ति मार्ग में कैसे अनुशीलन करना है उसका मार्गदर्शन दिया है। किसी कोई सवाल है?
भागवत में कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे कि ऋषि कन्याओं के द्वारा 84 लाख योग में कुछ होती है, या फिर नर्क का जो वर्णन है, लोग पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो जैसे कि नर्क दिखाई नहीं पड़ता, मतलब जो सजा मिलती है वहाँ पर भी, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को कैसे समझा?
तो भागवत में ऐसे कई संकल्पनाएं हैं जो हमें इस जगत में दिखती नहीं है, जैसे कि ऋषि कन्या जो है दक्ष के पुत्रियां जो है वह सब योनियों का जन्म देती है, या फिर नरक भी है। तो उसमें हमें सबसे पहले भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भागवतम बहुत विशाल है और उसमें अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है, अलग अलग प्रकार के वातावरणों के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए यह एक मिथ्याहंकार का लक्षण है व्यक्ति का, सोचता है कि अगर मैंने कोई चीज अनुभव नहीं की है तो वो संभव नहीं है। तो यह क्या है, वास्तव में इसका कोई आधार नहीं है। अभी विज्ञान ही इतनी प्रगति कर रहा है और उसमें इतनी सारी चीजें अभी विज्ञान ने खोज के निकाली पिछले 50 सालों में ही कि उसका विज्ञान में ही समझ नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग सोचते विज्ञान से हम सब कुछ समझ गए दुनिया में क्या है, पर विज्ञान हम इतना संशोधन करते हैं कि समझ में आता है कि कितनी सारी चीजें हमें समझ में ही नहीं आती है। और उसके मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ, इस पर पूरा प्रवचन हो सकता है कैसे विज्ञान में ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान समझ नहीं पाता है। पर उसके उदाहरण ऐसे हैं कि उसको एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं स्टेयरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर कोई व्यक्ति, अभी मैं यहां पर बैठा हूं और मेरे पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह मेरी ओर घूर के देख रहा है, तो अगर वो अभी मुझे तो मेरे सिर में कोई आंखें नहीं है तो कोई मेरे घूर के देख रहा है तो मुझे पता नहीं होना चाहिए। अगर मुझे अंदाजा लगाने को बोला जाए तो सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा हूं तो 50% संभावना हो सकती है, ये सही बोलूंगा गलत बोलूंगा। पर ऐसे अनुभव कर ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अनुभव किए हैं कि अगर लोगों को बोला जाए कि आप अंदाजा लगाओ आपकी ओर कोई देख रहा है घूर के, तो लगभग सब व्यक्ति 70-80% तक सही बोलते हैं, कुछ लोग तो 90-95% सच बोलते हैं। और इसमें क्या है, वह कैसे संभव ये पता नहीं है, पर ये अनेक जगह पे अनुभव किए गए और हम भी देखते हैं, हमको लगता है कोई मेरे देख रहा, पीछे मुड़ के देखते तो कोई देख रहा होता है हमारे, तो बहुत बार होता है ऐसे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो केवल स्थूल इंद्रियां नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां भी है, जो आंखें हैं वो केवल ये आंखें अव्यय नहीं है, मन में भी एक देखने की शक्ति है जिसे हम सपने में देखते हैं, हम सपने के समय आंखें तो बंद है। तो यह भी कैसे होता है ये विज्ञान को पता नहीं, पर यह होता है वो पता है। तो मतलब यहां पे कहने का मतलब यह है कि जरूर इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, जो हमारे समझ के परे है। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि जो हमने देखा है वैसे ही सब जगह पे होना चाहिए। तो हम यहां पे देखते हैं कि एक एक प्रकार की योनि से एक प्रकार का ही गर्भ होता है, पर दूसरे लोकों में, खास करके जब सृष्टि शुरुआत हो रही है, तो भगवान अपनी योजना से अलग पद से भी कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि अगर कोई कोई फैक्ट्री है जो जो एक प्रकार का मशीन मैन्युफैक्चर करती है, मास प्रोड्यूस करती है, तो क्या है वो फैक्ट्री, मान लीजिए वो मैच बॉक्स काड़े पट्टी बना रही है, कहते वो तो मराठी हो गए ना, माचिस बना रही, ठीक है, माचिस उसके डिब्बे, माचिस उसके डिब्बे बना रही। तो अभी उसको इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है कि वह से इस मात्रा के मैचेस बना रहे, और जो अभी मान लिए उसमें कोई उसमें कोई काम करने वाला व्यक्ति आ गया है, उसे 20 साल से वहां पे देख रहा है, वो देखता है कि हर रोज इस मशीन से इस प्रकार के ही काड़ी उसके द्वारा ही मैचेस आता है। तो अभी उसका अनुभव सत्य है और वो मैचेस उसी प्रकार से आते हैं, पर जो उसका मालिक है वह अगर चाहे तो मशीन का अरेंजमेंट, मशीन का प्रोग्रामिंग चेंज करके इतना मैचेस लाने की जगह पे इतना बड़ा मैचेस भी ला सकता है, इतना मोटा मैचेस भी ला सकता है। तो उसके अनुभव में वह मशीन ऐसे ही कर सकता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वह मशीन केवल हमेशा वैसे ही कर सकता है, मशीन और भी कर सकता है, उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया जाए तो फिर वो अलग भी कर सकता है। तो ठीक उसी तरह से हमने निसर्ग में देखा है कि निसर्ग ये इस प्रकार से, इस चीज से इस प्रकार की उत्पत्ति होती है, तो ये भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है इस तरह से, पर भगवान ही ये प्रोग्रामिंग करने वाले व्यक्ति है, वो प्रोग्रामिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत खास करके सृष्टि की शुरुआत में दूसरी पद्धति से भी निर्मिति कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भागवतम सिर्फ हमारे अनुभव के बारे में बता नहीं रहा है, और इस सृष्टि में हमारे अनुभव के परे भी बहुत सी चीजें हैं। इसलिए ये अगर व्यक्ति नम्र रहेगा तो उसको स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर वो नम्र नहीं है तो उसको विज्ञान में ही क्या क्या हो रहा है ये बता के उसको नम्र कर सकते हैं। ओके, यस सर।
आपने जो बताया कि पुराण तीन कैटेगरी में जो लोग, तो जो लोग पढ़ने वाले होंगे तो वो खुद को जज करके नहीं कुछ भी बुक बताते होंगे कि आई एम इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, आई विल रीड दिस, तो वो किस कैटेगरी से कैसे, मतलब क्या दृष्टि रखकर वो बनाए गए थे? क्योंकि हम लोग बोलते कि ये लोगों के लिए ये थे, ये लोगों के लिए ये था, लेकिन वो लोगों को ऐसे समझे कि मेरे लिए क्या है, तो कैसे पढ़ते
हैं? हम कहते हैं कि अलग अलग पुराण अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए है, पर क्या वो लोग खुद सोचते हैं मैं तामसिक हूँ इसलिए मैं तामसिक पुराण पढ़ूंगा? नहीं, ऐसा भाव नहीं है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। सातवें अध्याय के किस विषय में बोलते हैं भगवान कि जिस प्रकार की व्यक्ति की चेतना है उसके कारण वो इच्छा करता है कि इस प्रकार के रूप की मुझे पूजा करनी है, यो यो तनुम, जिस प्रकार का तनु है, जिस प्रकार का रूप है उसकी मैं पूजा करना चाहता हूँ, और तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, उसको उस प्रकार की श्रद्धा मैं प्रदान कर दूंगा, भगवान कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आचार्यगण बताते हैं कि ये श्रद्धा, प्रभुपाद जी इसके भाषांतर में बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, तो परमात्मा के रूप में भी भगवान श्रद्धा देते हैं, पर साथ साथ उस व्यक्ति को उस प्रकार के शास्त्रों के द्वारा भी वो श्रद्धा देते हैं। मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है तो उसको एक स्वाभाविक रूप से जो तामसिक रीति रिवाज है, तामसिक कार्य, उनकी ओर आकर्षण होगा, और फिर उसको उसके कारण अगर शिवजी जैसे वो भूतनाथ है, वह शमशान घाट में रहते हैं, वो अपने शरीर पर राख लगाते हैं, यह सब जो संकल्पना है उसकी ओर उसको आकर्षण हो जाएगा, और वो पूजा करना चाहेगा तो उसको उस पूजा में भगवान श्रद्धा दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति ऐसे नहीं है कि वो मेरा गुण कौन सा है और शास्त्रों का गुण कौन सा है वो सोच के वो शास्त्र पढ़ता है, नहीं, बस जिस प्रकार का गुण है उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार वो उस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों की ओर आकर्षित हो जाता है, और फिर उस प्रकार के संघ में जाता है, और उस संघ में उसको वो शास्त्र मिल जाते हैं। मतलब कैसे है कि लोग अलग अलग गुणों में हैं और वो उन गुणों में ही कार्य करने वाले हैं, अगर उनको भक्ति का आश्रय मिल गया और भक्त की कृपा मिल गई तो वो सीधा भक्ति में आ सकते हैं, पर अधिकांश रूप से यह दुर्लभ है, इसीलिए वह जिस स्तर पे है उस स्तर पे उनको धार्मिक बनाकर कैसे थोड़ा धीरे धीरे उसको उनका उनको प्रगति कराया जा सके, उसका वर्णन जो है उसकी जो योजना है शास्त्रों में है। तो इसीलिए वो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रकार के रीति रिवाज, उस प्रकार का संग, और उसके बाद में उस प्रकार के शास्त्रों के आकर्षित होता है। ओके,
भागवत पुराण जो सत्रह वाला,
हाँ तो हाँ बताने को भूल गया मैं वो। तो श्रीमद भागवतम जो हम पढ़ते हैं वह क्या किया, पहले जो भागवत पुराण जो 18 पुराण में था उसको व्यासदेव ने पुनः संकलित किया, एडिट किया और उसको फिर पूर्णतया से अमल कर दिया। और फिर वह जो है अभी हमारे पास भागवत पुराण शुद्ध जो श्रीमद भागवतम है वह अमल भागवत है।
आचार्यों का टीका पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने जो बोला कि जंगल में जैसे रोने के अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं।
हाँ
तो आचार्यों ने टीका लिखे भागवतम के ऊपर रामायण के ऊपर अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं।
आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए या नहीं? जरूर पढ़नी तो चाहिए, उन्होंने हमारे लिखे लिखे, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। तो वास्तव में पढ़नी चाहिए कि नहीं ये सवाल नहीं है, कब पढ़ना चाहिए ये सवाल है। जरूर हमें जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है उनमें जो मूलभूत सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से जब हम उसमें आ जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, उससे हमारी समझ जो है एक तरह से स्थिर हो जाएगी और फिर उसके बाद में हम आचार्य का ग्रंथ जरूर पढ़ सकते हैं। तो अभी ये कब होगा ऐसे कोई हमें कह सकते हैं कि आप 4 साल किताब पढ़ो, 5 साल किताब पढ़ो या फिर आप पूरा भागवतम चैतन्य चरितामृत 12 बार पढ़ लो फिर उसके बाद में आचार्य किताब या एक बार पढ़ लो, ऐसा कोई नियम नहीं लिख सकते हम। हर एक व्यक्ति को खुद प्रभुपाद जी शास्त्रों में प्रभुपाद जी ग्रंथों में अच्छी तरह से स्थिर हो जाना चाहिए, फिर अपने वरिष्ठ भक्त जो है उनका मार्गदर्शन लेके फिर पूर्वाचार्य के ग्रंथ जरूर पढ़ सकते हैं। और खास करके पूर्वाचार्य के ग्रंथ भी पढ़ने हैं तो उसको भी नियमित पद से पढ़ना चाहिए। मतलब क्या कि अगर मुझे कैसे अगर मुझे एक किताब को समझना है, अगर मैं गीता पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी गीता मैंने कई बार पढ़ चुकी है और मुझे गीता को और गूढ़ता से समझना है तो फिर मैं बलदेव विद्याभूषण चक्रवर्ती पाल की किताब को उठा सकता हूँ, वो पढ़ सकता हूँ और फिर उसको भी अच्छी तरह समझना है मुझे। तो क्या है हमें क्या नहीं करना है, हमें आचार्यों के ग्रंथों के साथ नेक्टर शॉपिंग नहीं करना है। नेक्टर शॉपिंग मतलब क्या, ये किताब उठाओ उसमें कुछ अच्छा पॉइंट मिलता है क्या देख लो, कुछ नहीं मिल रहा दूसरा किताब उठा लो दूसरा किताब पढ़ो। तो वो क्या होता है तो उस भाव से जब हम सीखते हैं नेक्टर शॉपिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वो आचार्यों के वचनों के प्रति हम सेवा नहीं कर रहे हैं, आचार्यों की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें हम हमारे मन को उत्तेजित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ खुद के मन को उत्तेजित करने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना पंडित हूँ, हम सिर्फ आचार्यों के किताबों से कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो वो भाव जो है उचित नहीं है। तो जरूर आचार्य के ग्रंथ पढ़ने चाहिए पर उसको पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों में हमें रूढ़ हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, उसे निपुण हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। और दूसरा है कि उसको आचार्य के ग्रंथों भी सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, मुझे ये विषय समझना है इसीलिए मैं ये किताब को पढ़ूंगा अच्छी तरह से किताब को पढ़ूंगा। तेने ब्रह्मा आदि कव ये कि इसमें कौन सा ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, वास्तव में यह जो उल्लेख आता है यह जो हमारा 18 श्लोक भागवत है उसके बारे में उल्लेख नहीं है। वह जो है अगर हम 3rd स्कंद के 8वें 9वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे चतुर्श्लोकी भागवत आता है, वहाँ पे आता है ब्रह्मास प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी, ब्रह्मा कैसे सृष्टि करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो वहाँ पे संक्षिप्त रूप में जो भागवत बताता है 4 श्लोकों में वह भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को दिया है, उसके बाद में जो है ब्रह्मा जी ने वो उसको उसको साक्षात्कार किया उसका और फिर उसका वर्णन नारद मुनि को किया है। तो जो ऐसे जो पुराण होते हैं वह श्रुति जो होती है, श्रुति और स्मृति में एक फर्क क्या है, श्रुति के शब्द वैसे ही रहते बदलते नहीं है पर स्मृति जो है वह इस तरह से बताई जाती है कि लोगों को समझ में आ जाए और उसके कारण उसमें एक पार्श्वभूमि होती है, एक संदर्भ होता है, उसके कारण कुछ चीज़ें उसमें बदलती हैं। तो कुछ चीज़ें बदलती हैं मतलब क्या, अगर भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया है तो अब 4th अध्याय के पहले श्लोक में बताते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, यह मैंने विवस्वान को पहले बताया। तो भगवान ने जब यह ज्ञान विवस्वान को बताया होगा तब ये श्लोक नहीं बताया होगा उन्होंने,
क्योंकि वो संदर्भ के अनुसार है।
तो इसीलिए जो संदर्भ होता है वह संदर्भ वह सनातन नहीं होता है। तो इसलिए जो भागवतम का सार है वो ब्रह्मा जी को दिया गया, और फिर बाद में जो अलग अलग कथाएं हैं वह उनका संकलन जो है वो व्यास देव जी ने अपने दिव्य दृष्टि से किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन।
हमें जो देखते हैं जो नॉलेज का रेगुलेशन हुआ है वो थोड़ा कभी कभी क्वेश्चनेबल लगता है, कि क्रिएशन के टाइम पे वेदा है, फिर टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते भगवत गीता आया, भागवतम आया, फिर चैतन्य चरितामृत आया, नेक्स्ट तरफ डिवोशन आया। जैसे आप बता दो नेक्स्ट तरफ डिवोशन चैतन्य चरितामृत जो है ये एपिटोम है भक्ति का, मेरे जो हम जीवों को देखते हैं उनमें तो डिग्रेडेशन आ रहा है, तो हैविंग एपिटोम नॉलेज ऑफ भक्ति विद द मोस्ट डिग्रेडेड सोल का कॉम्बिनेशन, मेरे ये तो पूर्व मतलब लास्ट युगों में ये ज्यादा एक्सेप्टेबल होता था और ज्यादा अच्छा लोग प्रैक्टिस कर सकते थे, तो ये रिकनसाइल है।
अच्छा सवाल है ये किस तरह से कि जब लोग हम देखते हैं कलयुग में और दूषित होते जा रहे हैं, तो फिर दूषित लोगों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत में दिया है वह क्यों दिया गया है, तो ऐसे पहले के लोगों को क्यों नहीं दिया गया? तो वास्तव में आचार्यगण बताते हैं कि नमो महावदन्याय परम कृपालो चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे होता है, भगवान हमेशा उदार चित्त के होते हैं और वह हर युग में लोगों को उनके उद्धार के लिए ज्ञान देते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में दो पद्धतियां बताई गई है, एक है धीमी पद्धति, एक है तेज पद्धति। धीमी पद्धति जो है धर्मार्थ काम मोक्ष पद्धति, और जो तेज पद्धति है शुद्ध भक्ति की पद्धति। दोनों का वर्णन है, पर जो वैदिक संस्कृति जब थी तभी भी अधिकांश लोग धर्मार्थ काम मोक्ष ही करते थे, शुद्ध भक्ति नहीं करते थे। भागवत में वर्णन आता है रुद्रासुर के लिए के समय में छठे अध्याय में कि उस समय वे भी मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्ता प्रशांतात्मा कोटीश्वपि महामुने, वहां पे भी जो भगवान के परायण भक्त होते हैं वो दुर्लभ थे। तो मतलब क्या, ये जो धीमा मार्ग है उसको ही अधिकांश लोग अपनाते थे वैदिक शास्त्रों के समय में धर्मार्थ काम मोक्ष, और अभी उस समय भी लोग जो तेजी मार्ग अपनाते थे पर वह कम थे, क्योंकि भक्ति जो है हमेशा दुर्लभ होती है। जीवात्मा इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए आया है, पर कलयुग और पूर्व युग में फर्क क्या है, कलयुग में जो माया आती है वो पाप के रूप में आती है, पूर्व युग में माया आती थी वो पुण्य के रूप में आती थी। मतलब पुण्य करो और पुण्य के कारण भक्ति से दूर रह जाओ, ऐसे होता था। कलयुग में पाप के कारण लोग दूर रहते भक्ति से, पर भक्ति हमेशा दुर्लभ ही थी। पर अभी कलयुग में कैसे हो गया है, कलयुग में भगवान हमेशा उदार चित्त के होते हैं, पर अभी मान लीजिए कोई बहुत उदार चित्त का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उसको कोई भीख मांगने आता है, मत मांगने आता है, तो वो दान दे देता है। पर उस जगह में मान लीजिए कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा, तो अभी वहां पर जो लोग हैं वो जो लोग उस समय वो जो उदार चित्त का व्यक्ति है वो और दान देगा। वह दान क्यों देगा, ऐसे नहीं कि वो व्यक्तियों ने कुछ किया है उसके लिए, वो क्योंकि वो व्यक्ति उस समय में यहाँ पे भूकंप आ गया है तो उसके लिए वहां पे वो व्यक्ति उदार चित्त बन गया है। ठीक उसी तरह से कलयुग एक आध्यात्मिक भूकंप के समान है, तो इसीलिए भगवान हमेशा ही दिव्य ज्ञान देते हैं, पर क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही भूकंपग्रस्त है, बहुत ही वो कम बुद्धि के है, कम प्रवृत्ति के है, इसीलिए भगवान की करुणा और बढ़ जाती है। इसीलिए भगवान ने जो सर्वोच्च ज्ञान जो है अभी दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले लोग भक्ति नहीं कर सकते थे, इसका मतलब अभी ये नहीं है कि अभी भक्ति बहुत आसान हो गई है। आसान जरूर हुई है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, फिर भी आसान होने का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं, आप कहते भक्ति इतने आसान है पर फिर चार नियम का पालन करना बड़ा मुश्किल है, कैसे भक्ति आसान है? तो आसान का मतलब ये क्या है कि अगर कोई एक जगह पे बहुत भूकंपग्रस्त के ऐसे उदाहरण है, कहीं बहुत ही ऐसे बीमारी का एपिडेमिक फैल गया, एपिडेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं,
महामारी
महामारी महामारी, अच्छा ओके महामारी फैल गई है, तो ऐसा जब आ गया है तो वहां पे अगर अगर वो कोई बहुत ही उदार चित्र का व्यक्ति, वो क्या करेगा, सबको दवाइयां फ्री दे देगा और जो भी सुविधा लगती है ठीक होने के लिए वो दे देगा। पर तो ये जो है ये उदार चित्त है, ये पर अगर वो कहेगा कि ठीक है, अगर कोई कहे मैं इतना उदार दिल हूं कि वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति को फैसला कर दिया कि आप ठीक हो गए होगी, तो वह कोई कृपा नहीं है। तो क्या है ये, there's a difference between being merciful and being compromising. Being merciful means to make the medicine very easily available. To compromise means to say that the sick state is the same as the healthy state. उन दोनों में फर्क है। तो ऐसे नहीं है कि हम भौतिक चीजों में आसक्त रहे और हम सोचते हैं कि चेतन महाप्रभु की बड़ी कृपा है इसलिए अभी मैं उनकी कृपा से उद्धार हो गया है। नहीं, उनकी कृपा से के द्वारा मैं मुझे मेरे लिए भौतिक चीजों से अनासक्त होकर भगवान से आसक्त होना ये आसान हो गया है। पर फिर भी मेरे आसक्ति को यहां से वहां ले जाना, उसके लिए प्रयास और संघर्ष मुझे ही करना पड़ेगा। और यह संघर्ष पूर्व युगों में भी करना पड़ता था, इस युग में भी करना पड़ता है। तो यह संघर्ष एक तरह से बहुत कठिन है इस कलयुग में, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। पर दूसरी ओर से वो आसान है, क्योंकि जो शुद्धिकरण की विधि है वो बहुत शक्तिशाली और आसान भी है। तो मतलब क्या, यहां पर ऐसे बहुत ही खतरनाक बीमारी भी है और बहुत शक्तिशाली दवाई भी है। तो अगर मैं दवाई लूंगा तो ठीक हो जाएगा, दवाई छोड़ दूंगा तो खतरनाक बीमारी पकड़ लेगी मुझे। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि जो एक धीमा मार्ग है प्रगति का और एक तेज मार्ग है, तो कलयुग में लगभग ये धीमा मार्ग है ही नहीं। तो क्या हो गया है, वो कोई लोग स्वर्ग में जाने की याचना ही नहीं करते, सब लोग अमेरिका जाने की याचना करते। तो या कलयुग में क्या है, एक तेज मार्ग ऊपर जाने का है और एक तेज मार्ग नीचे जाने का है। ये धीरे धीरे ऊपर जाने का मार्ग है ही नहीं। तो इसीलिए ये भगवान की कृपा लेंगे तो हम ऊपर जाएंगे और पर वातावरण के प्रभाव में आ जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, भक्ति का ही मार्ग था। नहीं, भक्ति का ज्ञान ऐसे नहीं था कि पहले युगों में था नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो स्पष्टता से उसका वर्णन है वह नहीं था, पर भक्ति का मार्ग जरूर था। नारद मुनि ने भक्ति की है, ब्रह्मा जी ने भक्ति की है, कितने सारे महान भक्तों ने भक्ति की है। भगवता में बताते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूतावत भाव मांगता, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 10वें श्लोक में बोलते हैं भगवान की बहुत लोग इसके पहले शुद्ध होकर मेरे पास आ गए हैं। तो जो स्पष्ट रूप से वर्णन था वह उतना स्पष्ट रूप से पहले नहीं था, पर ज्ञान तो जरूर था। लास्ट क्वेश्चन,
तो फिर कल्कि का होता शायद से फिर सबसे सुप्रीम हो, जिसके आगे का भी नॉलेज ले सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुप्रीम नॉलेज।
तो अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे उत्क्रांति हो रही है तो फिर शायद चैतन्य महाप्रभु के बाद कल्कि आएगा, तो कल्कि और ऊंचा ज्ञान भी देंगे, हो सकता है जरूर। पर हर एक अवतार का उद्देश्य बताया गया है और जो कल्कि अवतार है वो ज्ञान देने नहीं आते। कि वह जान लेने आते हैं। ऐसे नहीं है कि हर अवतार जो है वह को युग धर्म सिखाएगी। कलयुग कल्कि अवतार जो है युग धर्म नहीं सिखाते है कोई, वो क्योंकि युग के अंत में आए, अब युग धर्म क्या सिखाएंगे वो। तो वो युग का अंत होता है और फिर सत्युग चालू होता है, सत्युग का सत्युग का धर्म चालू हो जाता है उसमें। तो हर एक अवतार का उद्देश्य है, तो ऐसे नहीं है अलग अलग अवतार अलग अलग कार्यों के लिए आते हैं, सब अवतार युग धर्म ही सिखाते हैं ऐसे नहीं है। तो कल्कि अवतार जो आते हैं वह इस जब भौतिक जगत में जो अधर्म है बहुत प्रचलित हो जाता है तो उस समय उस अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की
जय।
गौर भक्तवृंद की
जय।
पिताय गौर प्रेमानंद
की जय।
श्री प्रभुपाद की जय।